अभिमन्यु ने नक्श और नकुल को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग नक्श और नकुल के लिए भारी पड़ने वाली थी। प्रशांत को जब अभिमन्यु के इस तरह अचानक मीटिंग बुलाने का पता चला तो वो तुरंत उसके केबिन में बात करने गए। अभिमन्यु के केबिन में बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं मिलती थी, फिर चाहे वो राजवंश फैमिली के लोग ही क्यों ना हों। प्रशांत को भी पृथ्वी ने केबिन के बाहर ही रोक लिया। वो सधे हुए लहजे में बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के आप इस केबिन के अंदर कदम नहीं रख सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद भी मिस्टर राजवंश बात करने के लिए अपने प्राइवेट केबिन में किसी को नहीं बुलाते। वो इस कंपनी का सीईओ बाद में होगा, लेकिन मेरा बेटा पहले है, मुझे उससे बात करनी है। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, प्रशांत गुस्से में झल्लाते हुए बोला। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सर, ये सब मिस्टर राजवंश के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही है, पृथ्वी ने जवाब दिया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है? मत भूलो कि तुम बस राजवंश एम्पायर के टुकड़ों पर पलने वाले एक नौकर हो। प्रशांत ने बातों ही बातों में पृथ्वी की बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी। प्रशांत पृथ्वी को धकेलकर आगे जाना चाहता था, लेकिन पृथ्वी उसके सामने आ गया। पृथ्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा, आप चाहे मुझे कितना भी भला बुरा सुना दीजिए, लेकिन मिस्टर राजवंश की परमिशन के बिना आप अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। अभिमन्यु अंदर कॉल पर मौजूद था, उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। उसने तुरंत कॉल रखा और दरवाजे के पास आया। अभिमन्यु ने अपने कार्ड से दरवाजा खोला तो सामने प्रशांत पृथ्वी पर चिल्ला रहा था। अभिमन्यु को देखते ही प्रशांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बस बहुत हो गया, आगे से अपने इस प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को कह देना कि मेरे रास्ते में ना आए, बात करनी है मुझे तुमसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पृथ्वी मेरा कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। दूसरी बात, उसके साथ तमीज से पेश आइए, अभिमन्यु ने उन्हें घूरते हुए शांत लहजे में जवाब दिया। हाँ जो भी है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या लगा रखा है तुमने? अभी इस मीटिंग को कैंसिल करो, नकुल मेरा बेटा है और राजवंश एम्पायर पर उसका भी हक बनता है। पहले ही नक्श अपनी हैसियत के मुताबिक एक छोटी पोजीशन पर है, ऊपर से तुमने ये मीटिंग बुलाकर उसे सबके सामने नीचे दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? चलो अभी सबको बोलो कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है, प्रशांत ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा। वो तो अभिमन्यु से ऐसी बात कर रहे थे जैसे कंपनी के मालिक ही हों और अभिमन्यु उनके अंदर काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉई। प्रशांत को लगा कि उनकी इतना सुनने का कुछ असर होगा, लेकिन अभिमन्यु चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कुछ पल रुकने के बाद अभिमन्यु ने पृथ्वी से कहा, आगे भी अपना काम ऐसे ही करते रहना, फिर सामने राजवंश फैमिली का कोई भी आदमी क्यों ना खड़ा हो। यहाँ मेरे केबिन में बिना अपॉइंटमेंट के सिर्फ तुम, इशिका और मेरी दादी को आने की परमिशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आगे से मेरे केबिन के सामने तमाशा लगाने से पहले ही तुम अननेसेसरी लोगों को हटा दोगे। ठीक है सर, मैं एंट्रेंस पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर देता हूँ, पृथ्वी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु ने प्रशांत को डायरेक्टली कोई जवाब ना दिया हो, लेकिन उसकी बातों ने उनका मुंह बखूबी बंद कर दिया था। अभिमन्यु के इस तरह इंटरवीन करने पर प्रशांत फिर से चिल्लाकर बोला, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मैं क्या कोई ऐरा गैरा हूं जो तुम अपने केबिन के आसपास मुझे फटकने नहीं दोगे? मुझे जवाब दो अभिमन्यु, बोलते हुए प्रशांत ने आगे जाकर अभिमन्यु की कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी बीच में आ गया था। अब तक मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन अगर आपने मिस्टर राजवंश को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे एक्शन लेना होगा, पृथ्वी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। चलो पृथ्वी, मीटिंग के लिए लेट हो रही है, अभिमन्यु इस मामले को शांत करने के लिए कहा और फिर अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए थे। पृथ्वी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसके आगे पीछे चल रहे थे। अभिमन्यु ने प्रशांत की बातों को सुना तक नहीं, ऊपर से उसकी बेइज्जती अलग से कर दी थी। वो पीछे से चिल्लाकर बोला, मैंने कह दिया यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी, तुम इस तरह मेरी बात को इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। तुम जो भी कर रहे हो इसकी शिकायत मैं मां से लगाऊंगा। प्रशांत राजवंश पीछे से चिल्लाता रह गया और अभिमन्यु पृथ्वी के साथ लिफ्ट में बैठकर मीटिंग रूम में जाने लगा। अभिमन्यु के ऐसा करने पर प्रशांत ने पैर पटकते हुए कहा, इस लड़के की इतनी औकात हो गई कि ये मुझे आंखें दिखा रहा है, शायद मैंने भी कुछ ज्यादा ढील दे दी, तभी ये सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसे मीटिंग करनी है ना, मैं देखता हूँ इस मीटिंग में इसकी कितनी चलती है। अभिमन्यु ने प्रशांत की कोई बात नहीं सुनी तो उसने मीटिंग रूम में तमाशा करने का सोचा, वो भी मीटिंग रूम में जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ इशिका अपने घर पर आने के बाद कुछ देर आराम किया। केशव किसी काम के चलते बाहर था, इस वजह से उसने डिनर भी अकेले किया। इधर उधर टहलते हुए इशिका बोर हो रही थी तो उसने अभिमन्यु को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अभिमन्यु मीटिंग के लिए जा रहा था और उसका मोबाइल पृथ्वी के पास था। अजीब आदमी है, इसलिए मुझे कहा था कि चुपके से मुझसे मिलने के लिए आएगा। अभी तो डैड भी घर पर नहीं है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, इसके पास मेरे लिए टाइम तक नहीं है। फिर से अपने अभिमन्यु राजवंश वाले जोन में चला गया होगा, इशिका ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा। इशिका राजवंश एम्पायर में होने वाली मीटिंग से पूरी तरह अनजान थी। इशिका ने फिर से अभिमन्यु को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसके पास पार्थ का कॉल आ गया। मेरा काम कहाँ तक चल रहा है? तुमने मुझे ड्राफ्ट मेल करने को कहा था, लेकिन अभी मुझे कोई मेल नहीं मिला है, पार्थ ने इशिका के कॉल रिसीव करते ही पूछा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, कल सुबह तक कर दूंगी, इशिका ने जवाब दिया। उसका अभी काम करने का मूड नहीं था। देखो मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कौन सा मेहनत का काम है, बैठकर ही तो करना है। बी लाइक डॉक्टर अनामिका, डोंट बिहेव लाइक मिसेज इशिका राजवंश, जिससे राजवंश फैमिली की तरह सब कुछ प्लेट में सजा सजाया तैयार चाहिए, पार्थ ने तंज कसते हुए कहा। उसकी बातों से साफ जाहिर होता था कि वो राजवंश फैमिली से कितनी नफरत करता है। इशिका ने आज से पहले कभी काम को इस तरह टाला नहीं था, उल्टा वो तो एक बार कोई काम करने लग जाती थी तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उठती ही नहीं थी। इशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, ठीक है 2 घंटे में मेल करती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा, ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट डिले पर है, पार्थ ने सफाई दी। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल कट कर दिया। वो काम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी। इशिका ने मन ही मन कहा, ठीक है इसका काम पूरा होगा तब तक अभिमन्यु मिलने आ ही जाएगा। अभिमन्यु से मिलने की उम्मीद लगाकर इशिका काम करने वापस बैठ गई थी, तो वहीं अभिमन्यु मीटिंग रूम में पहुंचा। वहां सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। अभिमन्यु बिना किसी भाव के अंदर आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। मीटिंग को हेड करते हुए मिस्टर एंड्रयू ने कहा, जैसा कि आपको पता है पिछली बार जब शेयर डिवाइडिंग मीटिंग हुई थी उस वक्त काफी कुछ बदल गया था। मिस्टर अभिमन्यु राजवंश जो सीईओ की पोजिशन पर है उनके पास पहले से भी ज्यादा शेयर है। आज की मीटिंग उन्हीं के कहने पर हुई है, जो कि मिस्टर नक्श और प्रशांत राजवंश की परफॉर्मेंस रिपोर्ट और कंपनी के कुछ फंड्स को लेकर है। सबसे पहले नक्श की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खोलते हुए मिस्टर एंड्रयू ने कहा, मिस्टर नक्श राजवंश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड मैनेजर की पोजीशन दी गई थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। उल्टा उनके इस पोजीशन पर आने के बाद पूरे 50 एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दी है, जो कि बहुत खराब डेटा दिखता है।
नक्श अपने आगे लगे माइक में कहा, हाँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने लोगों को कम दिया, उनसे काम नहीं हुआ तो वो छोड़कर चले गए, ये उनकी नाकामी दिखती है ना कि मेरी। लेकिन एम्प्लॉइज के रेजिग्नेशन लेटर के अंदर एक कारण आम देखा गया है कि वो हेड मैनेजर की वजह से परेशान है। उन्होंने उन्हें ऐसे टास्क करने को दिए जिन्हें करने में 1 महीने से ज्यादा टाइम लगता है और उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। वर्क प्रेशर होने की वजह से उन्हें ओवरटाइम करना पड़ा, जिसकी उन्हें सैलरी नहीं मिली। उल्टा काम न होने के लिए उन्हें जो सैलरी मिलती है उसे भी डिडक्ट कर लिया गया था, एंड्रयू ने उसे घूरते हुए कहा। नक्षब चुप हो गया था। अभिमन्यु ने अपने सामने लगे माइक में कहा, राजवंश एम्पायर इतनी पावर किसी को नहीं देता है कि वो एम्प्लॉइज की सैलरी बेवजह कट करे। अगर एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है या वो काम पर समय से नहीं आते हैं तो ये उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में लिखा जाता है, उसी के हिसाब से सब डिसाइड होता है। बिना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाए तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं उस डिपार्टमेंट का मैनेजिंग हेड हूँ तो मुझे डिसीजन लेने का पूरा हक है, नक्श ने अग्रेसिव होकर जवाब दिया। नहीं, ये हक तुम्हें नहीं है, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में जवाब दिया। फिर वो इंटरव्यू की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिन भी एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ा है मुझे उन सबका परफॉर्मेंस रिपोर्ट और डेटा चाहिए, उन्हें कॉन्टैक्ट करो और वापस जॉब पर रखो। जो शख्स अपना डेडिकेशन दिखाते हुए काम पूरा करने के चक्कर में ओवरटाइम कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी के, मुझे ऐसे डेडिकेटेड एम्प्लॉइज को खोना नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर मेरी इंसल्ट होगी। राजवंश एम्पायर का एक और रूल है कि कोई भी डिपार्टमेंट या सीईओ दूसरे डिपार्टमेंट में दखलअंदाजी नहीं करेगा, नक्श ने बीच में बोलते हुए कहा। इंसल्ट तुम्हारी नहीं होगी, उस पोजीशन की हो रही है जहां पर इस वक्त तुम बिना किसी क्वालिफिकेशन के बैठे हुए हो। तुम्हें उस डिपार्टमेंट का हेड किसने बनाया? क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिसके बाद तुम्हें वो पोजीशन मिलनी चाहिए? अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा तो सभी चुप हो गए। उसके चेहरे का भाव इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। मुझे पर्सनली अलग से शेयर मिलने की वजह से मेरी पोजीशन हाई हो गई तो मैं क्या जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर रहता? नक्श ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि इशिका राजवंश को R&D डिपार्टमेंट के हेड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन दे देते हैं। तुमसे ज्यादा शेयर्स उसके पास हैं और ऊपर से वो डॉक्टर मर्चेंट भी हैं। डिग्री, क्वालिफिकेशन और शेयर्स हर मामले में वो तुमसे आगे हैं, अभिमन्यु ने उसकी बात के जवाब में कहा। नक्श अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु फिर से सख्त आवाज में बोला, इशिका को वो पोजीशन डॉक्टर मर्चेंट होने के नाते मिल सकती है, लेकिन मेरी वाइफ या यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर होने के नाते कभी नहीं मिलेगी। खुद को प्रूफ करो। तुम्हारी पोजीशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ग्रुप बी के हेड के तौर पर थी, मैं तुम्हें वहीं वापस सेटल कर रहा हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर नक्श और बाकी सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये फैसला काफी कड़ा था, नक्श को बहुत नीचे डिमोट किया जा रहा था। देखा जाए तो ये उसकी पोजीशन नहीं थी, पहले उसने जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन डॉक्टर मर्चेंट को कंपनी में लाने के नाम पर हथिया ली थी, तो अब अपने नाम के शेयर होने का फायदा उठाकर उसने सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन ले ली थी। मैं उस पोजीशन पर काम नहीं करूंगा, नक्श ने बगावत भरे लहजे में कहा। ठीक है फिर, अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर तुम यहाँ से जा सकते हो, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर उन सब लोगों के होश उड़ गए थे। नक्श का ये हाल देखकर नकुल की भी हवाइयाँ छूटने लगी थी, तो वहीं प्रशांत गुस्से में खड़ा होकर टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोला, मेरा पोता यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो CMO की पोजिशन डिजर्व करता है। अगर मुझसे पूछे तो वो यहाँ बिना एक्सपीरियंस के एक छोटी जॉब तक डिजर्व नहीं करता है, अभिमन्यु ने भौहिंग ठाकर जवाब दिया। फिर उसने नक्श की तरफ रुख किया और कहा, रेजिग्नेशन लेटर मिल जाना चाहिए। नक्श ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर वहां से चला गया था। नक्श का जो हाल हुआ था उसे देखकर बाकी लोग घबरा गए थे। ये वही अभिमन्यु राजवंश था, जब यहां पर आया था तब उसने सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली और जो यहां सिफारिश पर आए थे या जो काम नहीं कर रहे थे उन सबको वहां से निकाल दिया था। नक्श का तो हिसाब हो गया था, अब नकुल की बारी थी। अभिमन्यु सच में अभिमन्यु राजवंश वाले जोन में आ गया है तो सबकी छुट्टी कर देगा। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। पढ़कर याद से कमेंट और रेटिंग दिया करो। मुझे तो आप बोल देते हो कि मैं टाइम से पार्ट नहीं देती हूँ, मैं चैप्टर देती हूँ तब कौन सा आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो।